ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंध अध्याय 5 और श्लोक संख्या 1 और 2। आज का जो लीला है हुआ है नंदोत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। श्री शुका उवाच नंद तू आत्मजे उत्पन्ने जात अहलाद महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृत वाचयित्वा स्वस्ति अयनम जातकर्मा आत्मजस्य वै कारयाम आस विधिवत पितृ देव अर्चनम तथा। श्रीशुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ना जात अहलादो महात्मना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात शुचि अलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्वयनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामासा विधिवत् पितृदेव अर्चना तथा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, एक भक्त लोग एक श्लोक पढ़ेंगे, दूसरे लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। नहीं नहीं, दूसरा वाला। मैं बोला एक भक्त ऊपर वाला बोलेगा, दूसरा भक्त हाथ जी और कोई पढ़ी लिखी माता जी है जो नीचे वाला पढ़ सके? चलो पिताजी लोग पढ़ लो नीचे वाला। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंदा महाराज नंद, तू निस्संदेह आत्मजे अपने पुत्र के उत्पन्न होने में जात अभिभूत हुए हो गए आह्लादा अत्यधिक हर्षित महामना विशाल मन वाले आहूय बुलाया विप्राण ब्राह्मणों को वेद ज्ञाना वेद के ज्ञाता स्नाता ब्रह्मचारियों को भी शुचि अपने को शुद्ध करके अलंकृता सुंदर आभूषणों तथा नए वस्त्रों से सज्जित वाचयित्वा पाठ करके स्वस्ति अयनम वैदिक मंत्रों का जात कर्मा जन्मोत्सव आत्मजस्य अपने लड़के का वही निस्संदेह कारयामासा संपन्न कराया विधिवत वैदिक विधान के अनुसार पितृदेव अर्चनम पूर्वजों तथा देवताओं की पूजा तथा भी अनुवाद और तात्पर्य भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाए, अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नंदस्तु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया है, क्योंकि यह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। अतः तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए, उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि यहां बताया गया है। नंदस्तु आत्मजः उत्पन्ने जात अहलादो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण वास्तव में तो मेरा पुत्र है, तुम तो आध्यात्मिक रूप से इसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है, किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतएव उसके लिए वहां अवसर था। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से जोग माया से पहले ही जन्म ले लिया था, इसलिए जोग माया उनकी छोटी बहन कही जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटना यथार्थ मानी जाती है। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वराह देव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वराह देव का पिता कहा जाता है। कारया मास विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म की हर्षातिरिकेव के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इस पचड़े में न पड़कर यह मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए यह उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जिनिमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इस दशम स्कंद को निरोध लीला कहा जाता है। अंग्रेजी में निरोध का मतलब होता है सेसेशन, यानी बस इसके बाद और कुछ नहीं। तो जो व्यक्ति इस दशम स्कंद को अच्छी तरह से समझ जाएगा या रुचि उत्पन्न कर लेगा, उसे संसार में किसी अन्य वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दशम स्कंद का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। पंच प्रकरण अन्यत्र चतुर्भी जन्म सत्पते अष्टाविंश भी पूर्व तामसत्वात्मजोधृति तथैव रायसानां च यादवानां विशेषतः सात्विकानेक विश्यत्यः निःप्रपञ्चाश चकरः भगवान एनेन नायत्रः तदर्थ षड्भगाविदा। इस दशम स्कंद को पांच भागों में पांच प्रकरण में बांटा गया है। जो प्रथम प्रकरण है वह कहलाता है जन्म प्रकरण अध्याय एक से लेकर के अध्याय चार के बीच में जो है वो जन्म प्रकरण है। उसके बाद अध्याय पांच से लेकर के अध्याय पैंतीस, 28 अध्यायों में तामस प्रकरण का वर्णन किया गया है, कालीय दमन तक, सॉरी केसी दमन तक, पुतना से लेकर के और केसी तक। उसके बाद अध्याय 36 से अध्याय 63, 28 अध्यायों में राजस प्रकरण का वर्णन किया है, जब भगवान मथुरा प्रवेश किए और द्वारिका में भी विभिन्न प्रकार के राजाओं को भगवान का दमन किए, प्राप्त किए, उसका वर्णन किया गया है। और अध्याय 64 से लेकर के अध्याय 84, इन 21 अध्यायों में सात्विक प्रकरण का वर्णन किया गया है, जिसमें उद्धव गीता भी आता है, सुदामा चरित्र आता है, द्वारका में भक्तों के साथ में भगवान जो लीला किए उसका वर्णन किया गया है। और अंतिम जो प्रकरण है वह गुण प्रकरण है, यह 6 अध्यायों में किया गया है, जिसे उद्धव गीता भी कहा जाता है। भगवान प्रयाण करने से पहले, जाने से पहले उद्धव जी को जो ज्ञान दिए थे उसका वर्णन किया गया है। तो आज की जो कथा है वो तामस प्रकरण का प्रथम कथा है। वास्तव में तामस प्रकरण भी नहीं, ये जन्म प्रकरण का और तामस प्रकरण का संधि का कथा है, यह संध्या का कथा है। भागवत महापुराण के इस दशम स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 18 तक, 18 श्लोकों में इस जन्मोत्सव का वर्णन किया गया है। कल आप लोगों ने सुना, क्या सुना, कितने लोग कल क्लास में थे, हाथ उठाओ तो, बहुत कम लोग थे। क्या सुना कल, कल का टॉपिक क्या था बताओ कम से कम। अरे हुंकारी तो भरो, क्या था टॉपिक, क्या टॉपिक था, तू क्लास में कल नहीं था, टॉपिक क्या था, ये हैं हमारे ब्रह्मचारी, ये दूसरा कहां है लड़का तुम्हारा दोस्त जो नाचता है दूसरे प्रकार से, क्या नाम उसका, जो विभिन्न, हाँ नहीं नहीं बुक रिसीव रिटर्न करता है रोड पर, है नहीं, रविंद्रन तो आया, रविंद्र कहां है, हाँ वो है, तुम्हारा दोस्त कहां है, क्या नाम उसका जो स्टॉप लाइट पर करता है, अनिरुद्ध, वो कहां है, बुक डिस्कशन करने चला गया क्या आज, इसलिए है, हाँ कल टॉपिक क्या था, अरे बोलो कम से कम एक आदमी तो बोलो, वसुदेव कंस कृष्ण को गोकुल लाए, ये टॉपिक था ना, तो कृष्ण अब कहां आ गए हैं, कहां गए हैं, तो जोर से बोल, प्रसाद है चिंता मत करो, गोकुल आ गए। अब गोकुल में जो उत्सव मनाया जाएगा वह टॉपिक आज है। यहां पर देखा जाए दो भक्तों को, एक वसुदेव जी को और एक नंद बाबा को, दोनों भगवान के महान भक्त हैं। वसुदेव जी की महानता देखी जाती है भगवान के आज्ञा पालन करने में। भगवान ने आदेश दिया कि आप मुझे यहां से नंद गोकुल ले चलो। उन्हें और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, एक ही चीज दिखाई पड़ रहा था कि मैं कृष्ण को नंद गोकुल ले जाना है। विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां रास्ते में आई, जिसका वर्णन आप लोगों ने कल सुना होगा। लेकिन आंख बंद कर करके बिना कोई कंप्लेन किए हुए वसुदेव जी उन कठिनाइयों को सहे, जमुना जी के प्रवाह को झेला उन्होंने, प्राण का भी थोड़ा भी चिंता नहीं किया, जलमग्न हो गए थे, यहां तक पानी आ गया था फिर भी चिंता नहीं किए। अर्धरात्रि में वे यशोदा भवन पहुंचे, नंद भवन पहले जमाने में स्त्रियों के लिए अलग घर था और पुरुषों के लिए अलग घर था, हालांकि टोटल नंद भवन कहलाता था लेकिन यशोदा के लिए अलग स्थान था। मध्य रात्रि में यशोदा जी के भवन में पहुंचे थे। नंद बाबा के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं वसुदेव जी, कोई देख लेता तब रात को नहीं, पेपर में फ्रंट पे भी आता कि वसुदेव जी यशोदा जी के महल में मध्य रात्रि को गए थे, ये था ना। प्रजल्प का बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाता है, खूब प्रजल्प भक्त करते, अरे नंद बाबा चले नंद रानी के महल में पहुंच गए वसुदेव जी। लेकिन वसुदेव जी सोचे भी नहीं, भजन करना इतना आसान नहीं है। एक कवि ने कहा है कि पथ क्या है, पथ की सफलता क्या, यदि कांटे सूल न हो। पथ क्या है, पथ की सफलता का, यदि कांटे सूल न हो। नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, यदि धारा प्रतिकूल न हो। ये भक्तों पर लागू होता है। पथ क्या, पथ की सफलता क्या, हम लोगों का पथ क्या है संदीपनी कृष्ण प्रभु, हम किस पथ पर चल रहे हैं, हैं? भक्ति पथ पर, वेरी गुड। हम भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, हम भक्त बने हैं ना, हम भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। तो पथ क्या है, पथ की सफलता क्या और भक्ति की सफलता क्या है, यदि हमारे भक्ति के रास्ते में कठिनाइयां ना हो। यदि कठिनाई नहीं आ रही है मतलब भजन ठीक से नहीं हो रहा है, कठिनाई जरूर आना चाहिए, फिजिकल मेंटल। वसुदेव जी उसका परवाह नहीं किए, जय श्री गौर निताय राधारास विहार इस तरह सम्मान की जाए, उसका परवाह नहीं किए वसुदेव जी। भक्तों को इसे सीखना चाहिए, हमें कोई परवाह नहीं करना चाहिए। पथ क्या है, पथ की सफलता का, यदि कांटे सूल न हो। कांटा और सूल, त्रिशूल जो चूहे। नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, हम लोग प्रचारक हैं, प्रचारक नाविक हैं, नायकों के रहे हैं, पीछे लोग बैठे हुए हैं बहुत लोग, ये लीडरों के लिए है। पहला जो बात था समान भक्तों के लिए, ये लीडरों के लिए। नाविक के धैर्य परीक्षा का, यदि धारा प्रतिकूल न हो। अनुकूल धारा में नाय चलाना वो बड़ा बात नहीं है, लेकिन प्रतिकूल धारा में कोई नाय चढ़ाए तो वो अच्छा लीडर है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शांति बनाए रह करके और भजन करे तो वह असली लीडर है। तो वसुदेव जी असली लीडर है, यह शिक्षा हमें प्राप्त होती है गोकुल लाने तक। तो हम भक्तों को सीखना चाहिए, चाहे लीडर हो चाहे भक्त हो। हम लोगों को सब टेस्ट पास करना चाहिए, सब टेस्ट पास, जैसे वसुदेव जी पास किए। अब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर के नंदालय आए, यशोदा जी के यहां। मैं जो कथाएं कह रहा हूं चार ग्रंथों का समावेश जिस्त लेकर के कर रहा हूं, गर्ग संहिता, आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू और भागवतम। तो इन चारों का समावेश कर करके भगवान जोग माया को जब भेजे तो जोग माया को आदेश दिए कि जाकर के तुम क्या काम करना, बलराम जी को ट्रांसफर कर देना एक काम था। श्रीपाद जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में इसका वर्णन किए हैं कि जब भगवान आए तो भगवान एक साथ में आए, इधर वसुदेव जी के यहां आए और इधर नंद बाबा के यहां आए। लेकिन जोग माया दो बार प्रकट हुई है। प्रथम बार प्रकट हुई थी, वो आई थी किस लिए, बलराम जी को रोहिणी के गर्भ से निकाल कर करके और देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करने के लिए एक काम वहां पर आई थी। जोग माया दूसरा कार्य किया, आकर के चली गई, जब भगवान आए वसुदेव जी के यहां वासुदेव के रूप में, तो ये यहां पर श्याम सुंदर कृष्ण नहीं थे, ये भगवान के चतुर्भुज जो हैं वासुदेव, शंकरसन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उसमें से वासुदेव आए चतुर्भुज के साथ में आए और इधर श्याम सुंदर आए। दोनों अपना अपना कार्य किए, भगवान अकेले नहीं आते हैं, जैसे राजा जाते हैं बड़ा आदमी जाता है अकेला नहीं आता है, उनके साथ में उनके सेवक लोग जाते हैं। तो जोग माया भगवान की सेविका है। मथुरा में जोग माया समस्त मथुरा वासियों को डीप स्लंबर में सुला दिया, एनेस्थीसिया दे दिया, सब सो गए। और जब भगवान ब्रज में आए तो उनके साथ में जोग माया आई उनके अनुजा के रूप में। भगवान के अनुजा हैं, भगवान बड़े हैं और जोग माया छोटी है। जीव गोस्वामी इसको प्रतिपादित किए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस पर किए हैं, कहते हैं जीव गोस्वामी कन्फर्म किए हैं कि कृष्ण और जोग माया, यशोदा जी को दो पुत्र उत्पन्न, दो संतान उत्पन्न हुए, एक लड़का और एक लड़की। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको क्लियर करते हैं कि पहले कृष्ण आए बाद में जोग माया आई। इस बात को बताने के लिए यहां पर आत्मज उत्पन्न इति पुत्र प्रकट हुआ, यहां पर सिद्धांत है कि पहले बेटा आया पहले बेटी नहीं आई, यानी जोग माया पहले आती तो अस्तन पान करती तो दूध जूठा हो जाता है। भगवान किसी का जूठा नहीं खाते हैं, भगवान को चाहिए फ्रेश चीज और जोग माया कर भी नहीं सकती है, इसलिए पहले भगवान आए और बाद में जोग माया। इसीलिए जोग माया को अनुजा कहा गया है भगवान का, या आत्मजा कहा गया, अनुजा या आत्मजा, भगवान आत्मज है और जोग माया जो है वो आत्मजा है। जब वसुदेव जी लाए कृष्ण को, जिस दिन कृष्ण का आविर्भाव हुआ है उस दिन उस रात सब लोग 12 बजे तक जगे थे, 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे सब जगे थे, सब लोग वार्ता कर रहे थे आपस में, प्रसव का समय हो रहा था। लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि सब लोग वसुदेव जी को देखें और ये जो लीला भगवान करने वाले हैं देखें। संडिल मुनि भी वेटिंग किए और बाद में कहे नंद बाबा को कि जाइए सब लोग आराम कर लीजिए और कल पुत्र रत्न का दर्शन कीजिएगा। तो शालडी ने बोली गुरु हैं उनका आज्ञा पालन किए सब लोग, सब सोने चले गए। तो उधर जोग माया मथुरा में सबको सुलाई थी गहरे नींद में, और इधर जोग माया सब लोगों को सुलाई थी गहरे नींद में, लेकिन सब लोग सुषुप्ति में थे, सब लोग स्वप्न देख रहे थे। उन सपनों में से गर्ग संहिता में एक स्वप्न का वर्णन किया गया है जिसको नंद बाबा देख रहे थे। नंद बाबा देख रहे थे कि वे गौशाला में हैं, और उन्होंने यशोदा रानी को देखा और यशोदा के हस्त कमल पर एक बहुत सुंदर पुत्र था, वह नारायण के सदृश था। इन नारायण के सदृश का वर्णन आगे जब गर्गाचार्य जब नामकरण हुआ है वहां पर नारायण सम कहा गया है, यह पुत्र नारायण के समान है। जी गोस्वामी उसका अलग से वर्णन किए हैं, नारायण सम का मतलब नारायण, नारायण जस सम इति नारायण सम, नारायण जिसके समान हो वो नारायण सम है, न कि नारायण के समान हो, यानी कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण के सर्वश्रेष्ठता का वर्णन जी गोस्वामी किए हैं। तो नंद बाबा कृष्ण का दर्शन इस रूप से कर रहे थे। वह रात जिस समय भगवान आए सब लोग चीर निद्रा में सोए हुए थे, केवल दो लोग जगे थे, एक थे बलराम जी और दूसरे थे वसुदेव जी। बलराम जी स्वयं शेषनाग के रूप में थे वहां पर, इधर रोहिणी के पास तो थे ही लेकिन शेषनाग के भी, रोहिणी के पास भी जगे हुए थे और शेषनाग के रूप में वहां पर थे। जब वसुदेव जी ला करके कृष्ण को रख दिए उस समय केवल एक लड़की उनको दिखाई पड़ी, जोग माया कृष्ण को ढक दी थी। तो नंदनंदन श्याम सुंदर को वसुदेव जी नहीं देख पाए, क्या देखे, उस लड़की को देखे। तो वे उस लड़की को उठाए और इस बालक को वहां रख दिए। तो ये जो वासुदेव हैं मथुरेश जो हैं वे और ब्रजेश ये दोनों एकाकी हो गए, एक हो गए, और अनंत शेष अंदर नहीं आए, बाहर रह गए। वो जो जो वो क्या बोलते हैं जिसमें लेकर के आए थे टोकरी, वो बाहर रखे थे बालक को लेकर के आए। तो अनंत शेष रोहिणी के निवास स्थान में चले गए, क्योंकि वहां पर शेषनाग स्वयं बलराम जी थे। मुखरा जो धात्री थी उसे पता था कि बालक आज प्रसव होगा, आज यशोदा रानी को संतान उत्पन्न होगा, वो जगी थी। लेकिन इस ट्रांजेक्शन के बीच में जोग माया ने ऐसा लीला किया कि वो भी गहरी नींद में सो गई। बलराम जी जन्म से बहरे और गूंगे थे, थे नहीं लेकिन ऐसा एक्ट कर रहे थे। जब सब लोग सोए हुए हैं सबसे पहले कोई जागा तो वे थे बलराम जी, हमेशा जगे थे। वे आए और उस सूतिका गृह के चौकट पर, पहले घरों में चौकट हुआ करता था, जानते चौकट ना, आजकल चौकट नहीं है घरों में, इसीलिए सब दुख अंदर चला जाता है। पहले चौकट लांघना, स्त्रियां जब एक बार विवाह हो गया तो चौकट लांग करके बाहर नहीं जाती थी, यानी उसी घर में रहती थी। मंदिर में ही पहले चौकट हुआ करता था, लोग अभी साउथ इंडिया में जाओ पुराने पुराने जितने मंदिर हैं सब जगह चौकट है लोग। खैर भगवान पर तो कोई विपत्ति नहीं आती है, भगवान पर कोई तकलीफ नहीं आता है। लेकिन जिस घर में चौकट न हो उस घर में विपत्ति जरूर प्रवेश करेगी। वो चौकट रोकता है विपत्ति को, ये संस्कार है। एनीवे, घर के बाहर भी चौकट, एक एक रूम में भी चौकट है ना चतुर्भुज, अभी भी है नॉर्थ इंडिया में ना चौकट है ना, चौकट होता है, हम लोगों को भी लगा देना चाहिए चौकट। तो बलराम जी चौकट पर खड़े होकर के बड़े हंस रहे थे, ठठा रहे थे, खूब खुश रहे थे। बलराम जी कभी हंसते नहीं थे, कभी रोते नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। रोहिणी जी बड़ी दुखी रहती थी। जब भी कभी कभी यशोदा रानी अपने हाथ पर बलराम जी को लेती थी तो बलराम जी मुस्कुराते थे, क्योंकि कृष्ण यशोदा के अंदर थे। अब इतने जोर से बलराम जी हंस रहे थे, इतने जोर से हंस रहे थे कि मुखराज जग गई। मुखराज जग गई, देखी बलराम जी हंस रहे हैं, किलकारियां मार रहे हैं। भगवान बलराम जी 7 महीने भगवान से बड़े थे, हाँ सॉरी, हाँ 7 महीने बड़े थे। तो इस प्रकार से जब हंस रहे थे बलराम जी, किलकारियां मार रहे थे, कृष्ण को मानो हंसा रहे थे, और दोनों भाइयों में बड़ा आनंद हो रहा था, तो मुखरा जगी तो उसका होशो हवास उड़ गया। अरे कहीं सांडल्य मुनि गुरुजी पूछ देंगे कि बालक का जन्म कब हुआ, वो नक्षत्र क्या था, किस मुहूर्त में हुआ, टाइम क्या था, तो मैं क्या बताऊंगी। वो समझ नहीं पाई, बड़ा दुखी थी कि हाय हाय, पूरा तपस्या किया, खूब व्यवस्था करके रखी थी मुखरा, बालक जब जन्म होगा तो प्रसव का पीड़ा न हो, उसके लिए मेडिसिन भी यशोदा को दे दी थी। एक आचार्य कहते हैं यशोदा को उसने मेडिसिन दिया था, इस मेडिसिन से यशोदा रानी बड़े प्रकार निद्रा में सो गई थी कि प्रसव हुआ पता भी नहीं चला। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जोग माया यशोदा को भी सुला दिया था। भागवतम में वर्णन किया गया कि प्रसव पीड़ा के चलते यशोदा इतनी थक गई थी, क्योंकि जब यशोदा रानी 55 साल की थी तब उन्हें कृष्ण जन्म लिए थे, तो वृद्धावस्था आ गया था। 55 साल में बच्चा हो तो स्वाभाविक है थकावट आ जाएगी। सब मिलाकर के मुखरा बड़ी दुखी हुई, लेकिन फिर भी मुखरा को आनंद हुआ बलराम जी को देख करके कि बलराम तो बहरा और गुंगा नहीं है, ये तो हंस रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, तो उसे आनंद हुआ मुखरा को। इधर सुबह हुआ तो पहले तो बाथरूम टॉयलेट नहीं होता है था, तो घर में स्त्रियां पुरुष जल्दी जग जाते थे। तो नंद बाबा अन्य ग्वाल बालों के साथ में सुबह सुबह जगे, और प्रत्येक दिन की भांति वे गौशाला के लिए चले गए। उससे पहले इधर मुखरा जगी थी, वो समझ गई थी, बालक को संभाली, यशोदा रानी जग गई थी। अब धीरे धीरे अन्य दासियां जगने लगी थी। सुखदेव गोस्वामी यहां पर जो बात कह रहे हैं इन्हीं श्लोकों के अनुसार हम चलेंगे और बीच में जो कथाओं को कहते रहेंगे। कहते हैं नंद तू आत्मज उत्पन्ने, इस शब्द पर हम विचार करेंगे। तू का अर्थ है, तू के दो अर्थ हो सकते हैं। तू जो है ये निश्चयता के रूप में आता है कि निश्चय ही नंद के पुत्र उत्पन्न हुए। जो लोग कहते हैं कि नंद रानी को केवल बालिका उत्पन्न हुई थी और बालक मथुरा से आया, सुखदेव गोस्वामी उसको नहीं मान रहे हैं, भागवतम हमारा प्रमाण है। तो कहते हैं नंद तू आत्मज, आत्मज आत्मा से, अपने से, देह को लोग आत्मा मानते हैं, या इस देह से, आत्मा मतलब यहां देह ले ले जाए तो इस देह से, ज मतलब जन्मा, कहां से जन्मा, नंद के देह से, तू मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तू का दूसरा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताए हैं, जी गोस्वामी कहते हैं कि यह जो बालक है यह बालक और जो वसुदेव जी के यहां जन्मा हुआ है, ये दोनों बालक में भेद है भी और भेद नहीं भी है, क्योंकि भगवान के अंश हैं वासुदेव, कृष्ण के अंश हैं वासुदेव, लेकिन कृष्ण षड ऐश्वर्य परिपूर्ण सर्वोत्तम भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन, ब्रजेन्द्र नंदन श्याम सुंदर जो हैं उस षड ऐश्वर्य, दोनों में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। तीसरा अर्थ है तू का भेद बताने के लिए कि दोनों में भेद है, लेकिन हम लोग इसी बात को लेकर चलेंगे कि नंद के यहां निस्संदेह ही पुत्र उत्पन्न हुआ, तब तो पुत्र का नंदोत्सव मनाएंगे। यदि लड़की पैदा होती या दूसरे का बच्चा आया होता यहां पर नंद बाबा जान जाते तो थोड़े लड़क उत्सव मनाते, नहीं मनाते। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान वसुदेव जी के यहां जो आए थे वो चतुर्भुज रूप में आए थे, तो वहां पर वात्सल्य भाव था, लेकिन वह जो वात्सल्य था वह ईश्वरमयी वात्सल्य था, तो वहां पर जात संस्कार इत्यादि नंदोत्सव मनाने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन यहां पर भगवान आए हैं तो यहां पर नवजात शिशु के रूप में आए हैं, इसलिए उनका यह उत्सव मनाया गया जिसे नंदोत्सव कहा जाता है या जन्मोत्सव कहा जाता है। उत्पन्न मतलब उत्पन्न हुए, जन्म लिए। मैं कई बार पहले बता चुका हूं जो जन्म शब्द है वह केवल कृष्ण पर लागू होता है। हम लोग कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म शब्द केवल कृष्ण के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। बलराम जी के लिए बलराम जन्म पूर्णिमा नहीं कहते हैं, बलराम पूर्णिमा कहते हैं। राधाष्टमी कहते हैं, राधा जन्म अष्टमी नहीं कहते हैं। नरसिंह चतुर्थी कहते हैं, नरसिंह जन्म चतुर्थी नहीं कहते हैं। रामनवमी कहते हैं, राम जन्म नवमी नहीं कहते हैं। लेकिन कृष्ण के लिए कृष्ण जन्म अष्टमी, तो जन्म जो शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए, इसे आप उत्पन्ने, राम के लिए उत्पन्ने शब्द नहीं आया हुआ है, केवल कृष्ण के लिए है। तो जन्म शब्द जो है वो केवल कृष्ण के लिए है। तो नंद तू आत्मज उत्पन्ने, ये जो बालक जन्म लिया कैसा था, सुखदेव को समझ जात जन्म लिया क्या, आह्लाद आनंद जन्म लिया। भगवान ऐसा नहीं कि भगवान जन्म लिए तब आनंद आया, नहीं। कोई कहता है अरे बेटा जन्म लिया बेटा का आनंद है, भगवान के जन्म का आनंद है। यदि हम कहते हैं भगवान के जन्म का आनंद तो भगवान को और आनंद को हम अलग कर रहे हैं, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक है। भगवान आनंद स्वरूप हैं, इसलिए वेद कहता है रसो वैसा, भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान आनंद हैं, भगवान रसराज हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोना, सोना से कोई अलग अलग ये बनाए, गहना बनाए, लेकिन अलग अलग गहना का नाम होने के बाद भी वह कहलाएगा सोने का गहना। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए चीनी का, चीनी का गांव में वो हाथी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं ना, बच्चों के लिए मिठाई बनाते हैं ना, हाथी का घोड़ा का, तो आकार लगता है हाथी और घोड़ा का, लेकिन वो हाथी घोड़ा नहीं है, वो क्या है, वो चीनी है, वो मिठाई होगा। तो वैसे ही कृष्ण और कृष्ण के आनंद में कोई अंतर नहीं, इसमें जातो आह्लाद, आह्लाद उत्पन्न हुआ, आनंद उत्पन्न हुआ। कृष्ण का मतलब ही होता है महान आनंद, ऑल अट्रैक्टिव, प्रभुपाद जी कहते आनंद उत्पन्न हुआ। तो कोई सामान्य बालक कृष्ण नहीं है, कृष्ण कौन है? आनंद घन है, आनंद स्वरूप है। तो जिसको आनंद चाहिए उसे क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब एक कृष्ण किसके पास आते हैं? तो यहां पर कहा गया महामना। यदि आप हम में से कोई चाहता है कि कृष्ण हमारे पास रहें, हमारे पास आएं, हमारे दिल में आएं, तो हम लोगों को बनना पड़ेगा क्या? महामना। मना मतलब माइंड, मेटेरियल माइंड, और महामना मतलब विशालकाय माइंड। और मन कब विशाल बनता है? जब निरंतर हम कृष्ण का चिंतन करते हैं। सब भक्त लोग महामना बन सकते हैं, कब? जब निरंतर कृष्ण का चिंतन करेंगे। यदि फेसबुक पढ़ना शुरू करेंगे और इंटरनेट और उधर का प्रजल्प मन में रखेंगे तो महामना नहीं बनेंगे। एक होते हैं हंस और एक होते हैं कौवा। कौवा कहां जाते हैं? गंदे जगह पर। और हंस कहां जाते हैं? जहां स्वच्छ निर्मल जल हो। तो महामना वही हो सकता है जो हंस का गति अपनाए। जो कौवे का गति अपनाएगा वो महामना कभी नहीं हो सकता है। नंद बाबा महामना हैं क्योंकि वे नित्य निरंतर नारायण का चिंतन करते हैं, नित्य निरंतर कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं, चिंतन करते हैं। कृष्ण सो रहे थे और नारायण का सपना देख रहे थे, कृष्ण का सपना देख रहे थे। सोते हुए भी जो कृष्ण के विषय में चिंता करता है वह है महामना, जगते हुए तो कहना ही क्या है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए महामना बनने के लिए। तो नंद बाबा का एक नाम है महामना। अब मैं यहां से कथा शुरू कर रहा हूं क्योंकि दूसरा श्लोक है वो कथा के बीच में आता है। तो नंद बाबा उस समय महामना नंद बाबा गौशाला में थे। वहां पर एक दासी भागते भागते गई, मुखरा ने एक दासी को बताया कि नंद बाबा को इसका संदेश देना चाहिए। मां के बाद बच्चों पर पहले अधिकार है मां का और बाद में है बाप का, कंपेरिजन किया जाए तब। तो नंद बाबा को बताना जरूरी था। तो दासी भागते भागते गई, भागते भागते गई। दूरी न कोई ज्यादा नहीं थी, नजदीक था, लेकिन इतना उल्लास था उस दासी के मन में। देखिए नंद बाबा यशोदा मैया को ब्रज के सब लोग दिल से मानते थे क्योंकि ये दोनों महामना थे। महामना का अंग्रेजी होता है महाबदान्य भी हो सकता है, मैग्नेनिमस हो सकता है। तो सब लोग इन्हें इतना आनंद पसंद करते थे, इन्हें कोई संतान नहीं थे। हम आगे सुनेंगे कि ब्रज की नारियां श्रृंगार करना छोड़ दी थी, ब्रज के पुरुष लोग अच्छा वेशभूषा पहनना छोड़ दिए थे इस दुख से कि नंद बाबा कोई संतान नहीं है। जमलार्जुन जो वृक्ष थे वहां पर सब ब्रजवासी जाकर के उन दोनों वृक्षों से प्रार्थना करते थे कि नंद राय को कोई संतान उत्पन्न हो जाए। जब यह खबर मिला तो बड़े आनंद के साथ में वो दासी भागते भागते गई। उसके आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे, मुख से कुछ निकल नहीं रहा था, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं रहा था, इतना उसमें आनंद था। अन्य गोप लोग थे सब अस्तब्ध रह गए कि क्या कहना चाहती, क्यों कह नहीं रहे, ये हांफ क्या रही है किसी को कुछ। अब तक से ब्रज में कोई दुख नहीं आया था, नंद बाबा के छत्र छाया में सब लोग अच्छी तरह से पल रहे थे। अरे दुख तब आया जब कृष्ण आ गए, जब तक से कृष्ण नहीं आए थे कोई तकलीफ नहीं था है? वैसे ही हम लोगों के जीवन में जब कृष्ण आ जाएंगे ना तब दुख आएगा, जब कृष्ण नहीं आएंगे तो दुख नहीं आएगा। तो किसी भक्त को दुख नहीं आ रहा है तो समझो कि कृष्ण नहीं आए हैं, कृष्ण आएंगे तब दुख आएगा, क्योंकि दुख से आनंद जो होता है वो सुख से आनंद नहीं होता है। दुख में सुख के मिलन का आनंद होता है और सुख में आनंद के विरह का दुख होता है, कब छूट जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। तो सब ब्रजवासी लोग, जितने ग्वाले लोग वहां पर थे जो गाय धोने के लिए इकट्ठे हुए थे, सब लोग सब देख रहे हो, बोलना नहीं चाहते, क्या बोलना, बोलो बोलो बोलो, वो कुछ बोले नहीं, सीधे भाग करके नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा नंद राय हैं, राजा हैं, वो बैठे हुए थे वहां पर, अन्य सब लोग गाय दोहन कर रहे थे। तो भटकते भटकते बेचारी बोली कि यशोदा जी को जायो, उन्होंने यशोदा ने जायो जन्म दिया है, अब क्या जन्म दिया है ये भी नहीं बोल पाई, जायो। फिर संभल कर करके बताया कि पुत्र जायो है। तब नंद बाबा बड़े प्रसन्नचित हो गए। अब नंद बाबा का वर्णन शिवाजी गोस्वामी किए हैं कि उनकी संचारी भाव में नंद बाबा आ गए। संचारी भाव वह भाव है जिसमें भक्ति स्वामी सिंधु में आप लोग पढ़ोगे कि भक्त अस्तब्ध रह जाता है, शरीर भारी लगने लगता है, उठ नहीं पा सकता है, चल नहीं पा सकता है। नंद बाबा सुने तो आनंद से इतना उनमें भार आया कि उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, साक्षात नारायण उनको उठाए, साक्षात नारायण उनको चलाए, क्योंकि महामना थे। नंद बाबा प्रसन्न हुए, उपनंद सुनंद अभिनंद नंदन सब आ गए वहां पर। उसके बाद नंद राय उपनंद के तरफ इशारा किए कि ये जो शुभ समाचार दी है इसको कुछ देना चाहिए। उपनंद जी, ये 5 दिन तक नंदोत्सव मनाया गया था, 5वें दिन के संध्या समय नंद बाबा मथुरा गए थे और 6ठे दिन पुतना आई थी छठी का दूध पिलाने के लिए। तो 5 दिन तक ये नंदोत्सव मना था। प्रथम दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे दिन क्या हुआ, 5वें दिन क्या हुआ, सबका अलग अलग वर्णन किया गया, लेकिन घंटी बज गई। चलिए हम प्रथम दिन का बात कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने जब इशारा किया, उपनंद ने समस्त ग्वाल बालों कहा जितनी गायें दोहन करने के लिए आई है, आ रही है, यानी जो दूध देने वाली गायें हैं, इन समस्त गायों को इस दासी को दे दिया जाए बछड़ों के साथ में, और उतना ही नहीं इसे कुछ चाहिए, इस ब्राह्मणी को, इसे गृहपति के आवश्यकता के अनुसार जो भी वस्तु चाहिए, धन धान जितना चाहिए सब दिया जाए। इस प्रकार से एक उत्सव वहीं गौशाला में मनाया गया। उसके बाद नंद बाबा के आह्लाद को देखिए, आह्लादे न समाजज्ञे बालम किम किम स एव सह एवं विवेक तु नंदस्यः न असित मति मति मति। नंद बाबा विचार नहीं कर पाए इस आनंद से कि बालक उत्पन्न हुआ है कि आनंद उत्पन्न हुआ है, ये है क्या। सुखदेव गोस्वामी वही कहते हैं, जातो आह्लाद महामन, महामनानंद बाबा के यहां क्या जन्म लिया, अहलाद जन्म लिया। और इस बात को फिल किए नंद बाबा कहते हैं अहलादेन समम यज्ञ बालम किम किम स एव सह, क्या बालक है, क्या बालक है कि आनंद है, एवं बिबेव तुम इस प्रकार से विवाच कर रहे थे नंदस्य नंद बाबा न असीम मतीर मति मत, उनका मति चकरा गया, समझ नहीं पाए कि बालक उत्पन्न का आनंद तो हुआ, क्योंकि उनमें इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इसलिए डिसाइड नहीं कर पाए कि बालक है कि आनंद है। तत्पश्चात अन्य ग्वाल बाल लोग सुबह सुबह बिना नहाए चले गए थे, गांव का बात था, लोग गाय धोने गए थे, थोड़े नहाकर को कपड़ा पहनकर गाय धोने जाता है, गाय धोने कैसे चले, गाय बांधना था, गाय का गोबर लगेगा, तो बिना नहाए ही काम चलता है। जी गोस्वामी पाद कहते हैं कि गो माता जहां होती है वहां केवल आनंद ही होता है, जिसको आनंद चाहिए वो गोसेवक है, सब टेंशन दूर हो जाएगा गाय का सेवा करने से। आजकल तो साइंसिस भी मान गए हैं कि ब्लड प्रेशर और मुकुंद माधव प्रभु शुगर ज्यादा हो गया है तो गाय का सेवा करो, ब्लड प्रेशर शुगर दूर हो जाएगा, गाय के पीठ पर हाथ ऐसे पहुंचो ना वो ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा सब, और एक खराब रेखा होगा वो भी ठीक हो जाएगा गाय का सेवा करने से। ये सामान्य बात नहीं है, गांवों में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, जब गौ माता प्रसन्न रहती हैं सब देवता प्रसन्न होते हैं, और सब देवता प्रसन्न होंगे तब आदि व्याधि अपने आप दूर हो जाएगी, दही दैविक भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे गौ के प्रसन्न से, तो गौ आनंद देती है। तो नंद बाबा का आह्लाद जन्म लिया कहां पर, गौशाला में आनंद हुआ। अब इसके बाद ये सब लोग वहां से स्नान करने के लिए गए, स्नान कर करके स्वच्छ कपड़ा पहन कर करके और आ रहे थे, दूर से ही रोहिणी जी देखी कि नंद बाबा आ रहे हैं। तब तक से यह समाचार फैल गया था, पहले जमाने में समाचार फैलाने का माध्यम था मोबाइल फोन नहीं था, मन था, मन के द्वारा जितने महामना लोग थे, जो लोग उस दिन का प्रतीक्षा कर रहे थे कि नंद रानी को संतान कब उत्पन्न होगा, जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो भगवान ऐसे निष्ठुर नहीं है, जो भगवान को चाहता है भगवान आते हैं। नंद जसोदा के यहां तो कृष्ण आए ही, जो लोग कामना कर रहे थे कि नंद बाबा जसोदा को कोई संतान उत्पन्न हुए, कृष्ण उनके पास भी आए, उनके मन में आए, वे लोग महामना बन गए। तो सोचना भी, भक्तों को सुख देने के लिए सोचना, भक्तों को आनंद देने के विषय में सोचना, हम लोग तो भक्तों को दुख देने में सोचते हैं, उसको कैसे दुख हो जाए, एक कर्मी मेंटालिटी है, भक्त मेंटालिटी है दूसरे को सुखी देख करके सुखी होना और दूसरे को दुखी देख करके दुखी होना। लेकिन हम लोग उल्टा, दूसरे को सुखी देकर हम एनवियस बनते हैं, दुखी होते हैं, और दूसरे को दुखी देकर के आनंद आता है, वेरी गुड, अच्छा हुआ उसको ऐसा हो रहा है, ये भक्त मेंटालिटी है, वहां भगवान नहीं आएंगे, वो महामना कभी नहीं बन सकता। तो जो लोग केवल इच्छा किए थे उन लोगों के पास भगवान सूचना तुरंत दे दिए। मैं पहले ही बताया था कि जो वस्तु जितना सूक्ष्म होता है उतना ही पावरफुल होता है, जैसे ये 8 प्रकृति है, भूमिरापन लो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृति सदा, भगवान की बहिरंगा शक्ति है 8 प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, राइट, मन बुद्धि अहंकार, ये जो है एक दूसरे से सूक्ष्म है, पृथ्वी से 10 गुना सूक्ष्म है जल, और पृथ्वी से पावरफुल है जल। अभी 4 धाम यात्रा देख लिया आप लोगों ने, सुना होगा, इतना पानी आया कि सबको बहा लेकर गया, पृथ्वी को पहाड़ को तोड़ दिया, बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ दिया। जल से भी सूक्ष्म है अग्नि, इसलिए अग्नि पावरफुल है 10 गुना जल से भी। पानी को वाष्पीकृत कर देता है, सुखा देता है पानी को अग्नि। अग्नि से भी पावरफुल है वायु, जो आग को बुझा भी सकता है और आग को लगा भी सकता है। वायु से भी पावरफुल है आकाश, वायु में केवल गंध ढोने का शक्ति है लेकिन आकाश में शब्द ढोने का शक्ति है। तो ये जो शब्द था कि नंद के यहां आनंद भयो प्रादुर्भूतो नंद नंद प्रादुर्भूतो नंदानंद, नंद के आनंद भयो नंद आनंद प्रादुर्भूतो नंद आनंद प्रादुर्भूतो नंद आनंद, कहते हैं ना नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। और तो बाद में हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, तो बाद में हुआ लेकिन अभी तक यही सब जगह यही फैल गया है। तच्च वाद्य विद्या विदु व्यंजित वाद्यम व्यक्तम एवं इति मुहु वक्ति अस्म। मुह मतलब बार बार, वक्ति मतलब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? प्रादुर्भूतो नंद आनंद, प्रादुर्भूतो नंद आनंद, नंद के आनंद भयो नंद के आनंद। और यह बात सब जगह फैल गया, कैसे? आकाश मार्ग से। ये सूचना आकाश, आज मोबाइल फोन भी है वो भी आकाश मार्ग से ही जाता है। कभी कहते हैं ना कि कंजेशन हो गया है, वो कंजेशन किसमें हो गया? आकाश में ही है ना। आकाश मार्ग से अमेरिका से यहां तुरंत एक सेकंड में, शब्द से भी नहीं। आकाश से भी सूक्ष्म है मन, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि। तो मन से ही पावरफुल है बुद्धि, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है अहंकार। बुद्धिमान व्यक्ति को भ्रष्ट कर देता है अहंकार, इतना पावरफुल है। और इससे भी पावरफुल है आत्मा, और आत्मा से ही पावरफुल है परमात्मा भगवान। इसलिए अभिन्न आत्मा नाम नामिनः, भगवान का नाम, भगवान में कोई भिन्न नहीं है। तो भगवान का नाम जो है वो मोस्ट पावरफुल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मूर्ख लोग नहीं समझते, कहते हैं नाम नाम राम राम करने से क्या होगा, हरे कृष्ण करने से क्या होगा, विपत्ति टल जाएगी। इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है नाम। इसलिए अहरनी समय ये नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वहां पर सब जगह जय जयकार ध्वनि हो रही थी, ये शब्द सुनाई पड़ रहे थे, और सब जगह यह कलह, मतलब कि पूरे ब्रज में यह बात छा गया था, आकाश में था। कहते हैं कि भाई बोलो, थोड़ा संभल कर बोलना, आकाश में रहता है, शब्द आकाश में रहता है। तो ये लोग बोल रहे थे प्रादुर्भूतो नंद आनंद, नंद के आनंद भयो, सब जगह यह बात फैल गई। अब वहां पर इस बात को सुनकर करके सब लोग आने के लिए तैयार हो गए थे। जितने पूर्ववासी थे सब लोग मांगलिक द्रव्य लेकर के आए। सुबह का समय था, सुबह 6 बज रहा था, सब लोग अपना मांगलिक द्रव्य लेकर के अपने अपने घर से जो जो था वो लोग आए। और अभी तक कृष्ण को नंद बाबा देखे नहीं थे, बाहर ही स्वागत हो रहा है। अब नंद बाबा के लिए बधाई गाई जा रही है। बधाई गाएंगे? नहीं, अभी नहीं, समय नहीं है। और नंद बाबा के लिए बधाई गाई जा रही थी। नंद बाबा कैसे थे उसकी बधाई। उसके बाद जितने ब्राह्मण लोग थे, ये तो नंद बाबा के जो सगे संबंधी बंधु लोग थे, क्लोज रिलेटिव थे, वे लोग पहले आए। ब्राह्मण लोग आना चाहते थे लेकिन वे बेचारे आ नहीं पा रहे थे। शूद्र लोग बिना बुलाए चले जाएंगे, वैश्य लोग भी किसी बहाने चले जाएंगे, लेकिन क्षत्रिय और ब्राह्मण बिना बुलाए नहीं जाते। बिना बुलाए नहीं जाते हैं। वो चाहते थे आना, लेकिन आ नहीं पा रहे थे क्योंकि बुलावा नहीं थी। तब नंद बाबा बुलावा भेजे, आहूय विप्राण वेद ज्ञान, आहूय मतलब बुलावा भेजना, बुलाए भेजे, बुलावा भेजे इन ब्राह्मणों को बुलाने। कैसे ब्राह्मण लोग? वेद ज्ञान, जिनको वेद का ज्ञान हो। ब्राह्मण की परिभाषा है, जन्म आ जाए तो शूद्र, संस्कार भवेत, वेद पढ़ेत भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो विदग्ध ब्राह्मण लोग वहां पर आए, स्नात ब्रह्मचारी लोग भी वहां पर आए। तो ये सब लोग वहां पर आए। उसके बाद नंद बाबा उन लोगों को वेलकम किए, और तदंतर मांगलिक जात कर्म पहले प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम माता पिता का पूजा करना होता है, क्योंकि कोई पुत्र तब होता है जब अपने बाप का ऋण चुका दे, और जब पुत्र उत्पन्न होता है तब बाप का ऋण चुकाते हैं। तो नंद बाबा को संतान उत्पन्न हुआ था तो अपने बाप का ऋण चुकाने के योग्य थे, इसलिए सर्वप्रथम बाप मां का पूजा की जाती है। जिसका संतान हुआ है वो अपने बाप मां का पूजा करेगा। तो बाप मां थे, प्रजन बाबा तो संन्यास लेने चले गए थे नहीं। तो बाप मामा कौन थे? उपनंद बड़े भाई थे, उपनंद और अभिनंद दो बड़े भाई थे। तो दोनों बड़े भाइयों की पूजा नंद बाबा ने की, बाप मां नहीं थे इसलिए, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है वो बाप के तुल्य होता है, वो बाप के समान होता है। तो उन लोगों का पूजा की, और जो दिवंगत जितने भी पितृगण थे उन लोगों का भी उन्होंने पूजा की, अपने पितरों का नांदीमुख श्राद्ध किया। अब दर्शन का समय आया। ये सब करने के बाद ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वचन कर रहे थे, और नंद बाबा आगे चल रहे हैं, सगे संबंधी ब्राह्मणों के साथ में आ रहे हैं। अब दर्शन करने का समय आया। रोहिणी जी वहां पर थी। देखिए, आनंद में हंसी मजाक होना जरूरी है। रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी है, मित्र की पत्नी है। तो रोहिणी जी नंद बाबा से कहती है कि आप ऐसे अपने पुत्र का दर्शन नहीं कर सकते हैं, उसके मुख दर्शन करने के लिए आपको ही देना पड़ेगा, मुख दर्शन करने के लिए देना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा कि आप जो मांगो है? जो मांगो, सब आपका है, सर्वस्व आपका है। रोहिणी जी ने को कहा कि मैं अपने इस आनंद को आपको दे रहा हूं। ये नंद बाबा का महत्ता है। उन्होंने कृष्ण को रोहिणी को सौंप दिया, यह मेरा आनंद आपके लिए, अब इससे बड़ा दान क्या चाहिए। रोहिणी जी छिपा दी थी जसोदा जी को, जसोदा जी कृष्ण नंद बाबा को देख न पाए। खाट पर जसोदा जी सोई हुई थी, वहां दूसरा खाट रख करके और चादर डाल करके जसोदा जी को रोहिणी जी छिपा दी थी। जसोदा आट वांत कैनवे और कही कि हे बाबा, हे नंजराय, ये आपके तीन खानदान को कुलत्रय जसोदा तीन कुल को जस प्रदान करने वाला यह बालक है, यानी मातृकुल, नाना का कुल और पितृकुल। क्योंकि कहा, अरे रे, कहा जाता है कि जो बेटियां होती है वो बाप के खानदान के आगे तीन कुल को, और जो बेटे होते हैं वो मां खानदान को, यानी नाना नानी का भी है और माता माता का और पिता का, तीनों कुल को यह पवित्र करने वाला है। इस प्रकार से बालक का वो दर्शन कराई। तब तक से उपनंद की पत्नी आ गई, और तो भाभी हैं, तो भाभी और देवर में मजाक तो होता ही है। और रोहिणी जी कृष्ण को देने वाली थी नंद राय को, तब तक से उपनंद की पत्नी पकड़ ली गई। नहीं ऐसे थोड़े होगा, खाली हाथ थोड़े हम देने देंगे, नंद राय को हमें भी कुछ देना पड़ेगा। तो अरे अरे आप तो हमारी माता तुल्य, हमारी भाभी हैं, आप हमको दोगी ना, मैं थोड़े आपको दूंगा। तो वहां थोड़ा प्रसंग हुआ है, आनंदमय प्रसंग, मैं उसका विवरण नहीं करूंगा क्योंकि समय बीतते जा रहा है। आई थिंक किताब को बंद करके तभी काम करेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर नंद राय को बाद में दी, जब नंद राय दर्शन कर रहे थे तो एक सेकेंड के लिए वे अस्तब्ध रह गए, आंख खुला का खुला रह गया, शरीर में कोई चेतना नहीं रह गई थी, यशोदा रानी से रहा नहीं गया, अपने उस बिछावन पर खाट पर पड़ी थी, खाट के आगे खाट रखा हुआ था, पर्दा लगाया हुआ था, लेकिन पर्दा हटा करके नंद बाबा का दर्शन, अपने बालक का दर्शन नहीं कर रही है, अपने नंद बाबा का दर्शन कर रही है, क्योंकि पहला संबंध नंद बाबा से, दूसरा संबंध बालक से है। तो नंद बाबा का दर्शन यशोदा रानी कह रही है, और यशोदा रानी के आंखों में झरझर झरझर आंसू की धाराएं बह रही थी। बुढ़ापा अवस्था में नंद बाबा को संतान हुआ था, उनके आनंद को देख करके यशोदा रानी रो रही थी। यह नंदोत्सव है, आनंद का उत्सव है, और आनंद में रोमांच कंपा सुतरंग भाव, रोमांच होता है, कंपन होता है, अश्रुधारा बहती है, तो अश्रुधाराएं बह रही थी। बाद में भगवान कृष्ण के विभिन्न अंगों का भगवान नंद बाबा दर्शन किए हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। उसके बाद अब जात कर्म प्रारंभ हुआ। नंद बाबा दर्शन कर लिए तो ब्राह्मण लोग आए, वे जात कर्म शुरू किए, तो उनके अलग अलग अंगों का वे संस्कार किए। उसके बाद पीठ पर कलश रख करके पीछ के सभी का उनको संस्कार किए। तदोपरांत यशोदा रानी के अस्तन को धुलवाया गया और मंत्रों से उसका संस्कार किया गया, क्योंकि कृष्ण अस्तन पान करने वाले हैं। और बाद में वे ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण के द्वारा बालक को हनी और घी चटाए पहले, और बाद में दूध पिलाया गया। उसके बाद नाभि नाल छेदन संस्कार किया गया। अब उस समय मुखरा कांप रही थी, क्योंकि नाल काटने का, नाभि काटने का काम जो है वो मुखरा का था, और जब मुखरा जब जगी थी तो देखी बालक खेल रहा है, नाभि कटा हुआ ऑलरेडी, तो आश्चर्य हो गया। तो देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, कह रही ऐसा कैसे हो गया, मैं कितने बच्चों का जन्म दिलाया और कितने का नाल काटा, लेकिन एक बालक कैसा बालक है, इसमें तो नाल नहीं है, कमल का फूल है, उसके नाभि में नाल नहीं है, कमल का फूल है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय। तो नमः पंकज नाभाय, जिनके नाभि में कमल का फूल हो वे हैं कृष्ण। घबराती घबराती आई और संडल मुनि से कहती है, गुरुदेव जब मैं जगी तो देखी कि नाल तो कटा हुआ है, और जब मैं नाभि देखी तो वहां कमल का फूल है, वहां तो नाल है ही नहीं। तो जिसमें नाल होता है उसका संस्कार करना पड़ता है, इसमें नाल नहीं है, ये तो इनका संस्कार क्या है, ये तो दिव्य पुरुष हैं, तो इसलिए उनका वो नाल संस्कार नहीं हुआ। अब इसके बाद दान प्रकरण शुरू हुआ। अब दान प्रकरण जब शुरू हुआ तो बाचयित्वा स्वस्तनयनम अयनम जात कर्मा, जात कर्म संस्कार खत्म हो गया, करया मास विधवा पितृदेवार्चनम तथा पितरों का भी वो जो कर्मकृत संस्कार जो था पितरों के लिए वो कर दिए थे। अब क्या किए, अब दान देना शुरू किए। देखिए वसुदेव जी भी दान दिए थे लेकिन वो मन से दान दिए थे, नंद बाबा मन से दान नहीं दे रहे थे, ये साक्षात दान दे रहे। 18वां श्लोक में यही वर्णन किया है कि साक्षात लक्ष्मी जी वहां पर आई थी, तो जहां भगवान होते हैं वहां लक्ष्मी जी अवश्य ही रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहां पर बताया गया है धेनुनाम नियतो प्रदाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्री सप्तरत्नोघ साधको सांबरावृतम। पहाड़ के समान तिल, धान, हीरे जवाहरात, सोने और 20-20 लाख दूध देने वाली गाय इन ब्राह्मणों को दिए और दक्षिणा भी दिए कि जब तक से दक्षिणा न दिया जाए तब तक से दान का महत्व नहीं है, दान का तब महत्व जब दक्षिणा दिया जाए। तो दान और दक्षिणा दे करके इन लोगों का विदाई किए। उसके बाद अब ब्रजवासी लोग दर्शन करने के लिए आए, सब गोपियां जो श्रृंगार करना छोड़ दी थी वे गोपियां, यहां पर एक श्लोक है इसे वर्णन किया है, कालेन स्नानम शौचाभ्यम, जो समय है सब वस्तुओं को शुद्ध करता है, स्नान से सफाई होती है, संस्कार से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रिय शुद्ध होती है, पूजा से ब्राह्मण शुद्ध होते हैं, भक्त शुद्ध होते हैं, शुद्धयन्ति, दान से धन शुद्ध होता है, संतोष से मन शुद्ध होता है और भगवत भक्ति से आत्मविद्या, भगवत भक्ति से आत्मा शुद्ध होता है, आत्म साक्षात्कार जो होता है भगवत भक्ति से होता है। तो इस प्रकार से सब प्रकार से शुद्धि किया गया। उसके बाद ब्रज में सब लोग अलंकार पहन पहन करके आ रहे हैं, जो ब्रजवासी गण अलंकार पहनना छोड़ दिए थे वे सब स्त्रियां संदूक से निकाल निकाल करके उत्सव के समय जब तक से अलंकृत न हो, अलंकार न पहना जाए तो वो उत्सव नहीं कहा जाता है। हीरे जवाहरात सोने चांदी के जितने गहने थे, शुद्ध सिल्क के जो कपड़े थे, स्नान कर करके सब पहन करके ब्रजनारियां आ रही हैं। आजकल जितने गहने हैं स्त्रियां खरीदती हैं लेकिन लॉकर में जमा कर देती है, विवाह के समय भी असली नहीं मिलता है, आजकल तो भाड़ा पर गहना मिलता है, जानते हैं भाड़ा पर गहना मिलता है, असली नहीं, नकली होता है, बैंगल लगता है सोना जैसा, सोना का नहीं है वो, कान का एक पहनावा भी सब भाड़ा पर मिलता है, नेक्स्ट डे वही पैंट शर्ट पहन लो फिर से हो गया, पहले भाड़ा पर नहीं था, असली था उन लोगों के पास, सब निकाले और सब पहन करके आ रही हैं। एक श्लोक है, मैं से पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, अज निज सोदा निज सुत सारम, ये गा रही हैं गोपियां, श्रृंगार करके आ रही हैं, गा रही है, अज निज सोदा निज सुत सारम इति महिला लितरा तदगारम, संभ्रम विरति बहु विषवेशम पथिमाल्यत बपुरित देशम चलमणि कुंडल चरमणि कुंडल बलित कपोलम अपरिकलित गल दंश निचोलम उक्षति चक्ष विचापनहारम चित्र बसन बस रसनाबारम। इस प्रकार से गाती हुई ये महिलाएं आ रही हैं कि हे सखियों चलो यशोदा जी के यहां पर हम लोग चल रहे हैं, वहां पर लाला का दर्शन करेंगे, उनके बालों में जो पुष्प लगे थे मालती लता वो सब गिर रहे हैं, उनके कपोल पर जो झुमका जो पहनी थी उनका आवाज आ रहा था, उनके पैरों में जो नुपुर था उसका आवाज आ रहा था, और जो वस्त्र धारण की थी उन वस्त्र में छोटे छोटे नुपुर थे उसका, यानी मनसा वाचा कर्मणा से कीर्तन करते हुए गोपी आ रही थी। मान लो मोटा मोटी कीर्तन करते हुए भगवान का सेवा जब करना है तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों लगना चाहिए, भगवान का दर्शन करना है तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों लगना चाहिए। इन गोपियों का मन वचन, मन में यह लगा था कि हम नंदलाल का दर्शन करेंगे, वाणी से नंद बाबा और यशोदा मैया का गुणगान कर रहे थे, और जो अलंकार था वो करताल का काम कर रहा था। तो मनसा वाचा कर्मणा पैर से चल रही थी ये, इस प्रकार से वे सब वहां पर आई और आकर के लगी बधाई देने। बड़ा सुंदर श्रीपाद जी गोस्वामी बधाई का भी वर्णन किए हैं। बधाई में क्या कहती हैं? ऐसा वैसा बधाई नहीं, कृष्ण के लिए कामना कर रही हैं। पाही चिरम ब्रजराज कुमार अस्मा अत्र शिशो सुकुमार पाही चिरम, गायन कहती है कि हे ब्रजराज कुमार आप समस्त ब्रजवासियों का रक्षा करें, पाही चिरम बहुत समय तक ब्रजवासियों का रक्षा कीजिए। अस्मान अत्र शिशो सुकुमारम अस्पृहाम अस्ते हसित मुखाय अंगण संग नरीक सुखाय गोबाल अवलित आलंबित चलन तव बलताव बलंबित। तो सब कामना कर रही है कि आप जल्दी बड़े हो जाओ, ग्वाल बालों के साथ में खेलो, जो जो कामनाएं की हैं गोपियां भगवान ने उनके कामनाओं को पूर्ण किया है। जैसे अक्रूर जी जब आ रहे थे कृष्ण बलराम को लाने के लिए जो जो कामना किए वैसे वैसे भगवान पूरा किए। भगवान निष्ठुर नहीं है, हम लोग कंजूस हैं कामना नहीं करते हैं, यदि हम कामना करेंगे तो भगवान जरूर पूरा करेंगे, हम कामना ही नहीं करते हैं। अरे इतना भी कामना करो कि मंगला आरती में आ जाऊं, आओ या ना हो दूसरा बात है, कामना तो करो कम से कम, कामना करो वैष्णव सेवा करो, कामना करो भगवान जरूर पूरा करेंगे। कंजूस मत बनो, कलयुग में मन में सोचने से भी फायदा होता है, करना तो और ही बात है, करोगे तो अच्छा है। मन में भी सोचो वैष्णव सेवा का, मन में सोचो भगवान के सेवा का, मन में सोचो एक लाख गीता बांटने का, उसका भी फल मिलता है, करोगे तो कहना ही क्या है। तो ये सब कामना कर रही है। गोगर चार विरहण मस्य सतु पश्य दर्भाग्य अस्य, कहते हैं जब आप गोचारण करके आओगे तो हम लोग आपका दर्शन करेंगे, हमारा कितना सौभाग्य होगा, ये बातें कह रही है। और सही में जब कृष्ण आ रहे थे गोचारण करके, बराहा पीडम नटोर बपो करने कारम, ये गोपियां भगवान का दर्शन कर रही थी, भगवान पूरा किए उनकी इच्छाओं को। दुष्ट कदन दुष्ट बलाय भवशिष्टालय शिष्ट फलाय, आप दुष्टों का दमन करेंगे और अपने भक्तों का को आप आनंद देंगे, इस प्रकार से ये बधाई देते हुए आ रहे थे। अब इधर गोपियां आई, पहले गोपियों ने दर्शन किया, बाद में गोप लोग अब आ रहे हैं सब, और सब लोग जो जो जिनके घर में जो जो वस्तु था वो सब लेकर के आ रहे थे, सब लेकर के आ रहे थे, दूध दही सब लेकर के आ रहे थे, मक्खन। और ये आनंद ऐसा होता है जैसे होली है चाहे अन्य चीज है, जब तक से आनंद न आए तब तक से हम कपड़ा कॉन्शियस रहते हैं, कपड़ा पर कहीं छीटा न लग जाए थोड़ा भागते रहते हैं, लेकिन जब आनंद कॉन्शियस हो जाएंगे चाहे रंग डालो चाहे कीचड़ डालो डजन मेक डिफरेंस, तो आनंद कॉन्शियस। तो ये ब्रजवासी लोग आनंद कॉन्शियस थे। तो मक्खन घी दूध दही सब ला ला करके नंद बाबा को अभिषेक करना शुरू कर दिए, सब डालना शुरू किया नंद बाबा पर। नंद बाबा दूध दही घी से लद गए और नंद बाबा उठा करके डालने लगे। अब एक गोप लोग ये कर रहे हैं, कृष्ण के आनंद में गोपियां देख रही है, गोपियां देख करके नंद बाबा का गुणगान करेंगे। पश्य सखी कुल गोकुल राजम पुत्रो सव मनु खेला भाजन। हे सखियों, पश्य सखी कुल गोकुल राजन, हे सखियों, ये गोकुल राजन नंद बाबा को तो देखो, पुत्र उत्सव बमनु खेला भाजन। अरे बेटे के उत्सव में स्वयं छोटा बच्चा बनकर के छोटे बच्चे के समान खेल रहे हैं। राजा है नंद बाबा ना, नंद बाबा राजा है, ब्रजराज है। राजा खेल खेलता है तो थोड़ा लोग समझ रहे कैसा है, ब्रजहरी प्रभु थोड़ा खेल खेलना शुरू कर लोग, अरे ब्रजपुर खेल रहे थोड़ा सोचेंगे ना। तो राजा जब कुछ करता है तो थोड़ा आनंद होता है प्रजा को। तो ये लोग उदधि प्रभ दधि संप्लव देशम परितो घृणित मंदरकम वेशम। मंदरा के समान, मंदराचल पर्वत के समान दूध दही से लग गया। और जैसे मंदरा पर्वत जब चमन हो रहा था तो उसमें से चंद्रमा निकले थे। तो फिर कृष्ण का वर्णन करने लगी, बड़ा सुंदर ये बधाइयां हैं, ये सब बधाइयां हैं, संस्कृत में गाया गया है, ये सब बधाइयां हैं जो गाई हैं गोपियों ने गाया। अब उसके बाद मामा नाना भी सब आ गए थे, कृष्ण के मामा वगैरह भी वहां पर आ गए थे, कंस मामा के अलावा, कंस मामा नहीं आए थे, वो तो वसुदेव जी के यहां थे, लेकिन जो यशोदा जी के तरफ से जो थे उनके मामा ही थे। और जो चाचा लोग थे कृष्ण के, यानी नंदन सुनंद, ये सब लोग मामाओं को पकड़ करके ला करके और उस दूध दही में पटक दिए कि तू लो साइड में क्यों रहते, इधर आओ। तो वहां बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया, वह दिखाया गया। फिर सब लोग मिलकर के स्नान करने गए, ये दूसरा दिन का लीला है। उसके बाद शाम हो गया, स्नान करने गए, स्नान कर करके आए, सब लोगों को बहुत सुंदर मिष्ठान भोजन कराए नंद बाबा। हमें डेली फिस्ट हो रहा था वहां पर, पांचों दिन तक फर्स्ट क्लास शुद्ध घी का बना हुआ, सब लोग खाए और चले गए। दूसरे दिन नंद बाबा स्नान कर कर करके और सम्यक रूप से, वो फोटो यहां पर नहीं है, एक फोटो है जहां पर नंद बाबा कृष्ण को अपने गोद में लिए हैं और सबको दान दे रहे हैं, ये वाला फोटो, कृष्ण को लेकर के नंद बाबा दान दे रहे हैं। अब स्नान कर करके नंद बाबा दान देने लगे, ऐसा दान दे रहे थे, ऐसा दान दे, लक्ष्मी को भी लज्जा लग रहा था कि धन कहां से आ रहा है इतना। नंद बाबा सोच भी नहीं था कि पैसा, जब देखो देने में जो आनंद है लेने में आनंद नहीं है, महामना है नंद बाबा, खुले दिल से दे रहे हैं, है खजाना में कि नहीं वो भी पता नहीं है। यहां पर वर्णन किया गया है कि जब नंद बाबा आए थे तो वहां पर नंदोत्सव, सांडिल्य मुनि पधारे, रत्नाकर, चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु, ये सब वहां पर आ गए थे। अब कामधेनु आए हैं तो दूध ही कमी थोड़ी होगी, रत्नाकर आ गए, चिंतामणि, पारसमणि सब आए हैं, और लक्ष्मी साक्षात वहां पर है। तो खुले हाथ से नंद बाबा दान दे रहे थे, खूब दान दिए, खूब दान, उठाकर ले जाने में थक रहे थे लेकिन देने में नंद बाबा थक नहीं रहे थे। और ये दान नंद बाबा ही नहीं देख रहे थे, सब लोग दान दे रहे थे। जो लोग आते थे यदि एक आ दिया कि नंद के आनंद भयो, सूचना दे दिया, वो अपना सामान को दे दिया और ये अपना सामान दे दिया, हो गया दान उसको, चलो वहीं से। इस प्रकार से दान दिया जाता, खूब दान दिया गया, दो दिन तक दान दिया गया, इस दान का वर्णन दो दिन तक किया गया है। तो इस प्रकार से ये चार दिन हुआ। पांचवा दिन रोहिणी जी के द्वारा नंद बाबा दान दिलाए थे, क्योंकि रोहिणी जी पहले शास्त्र के अनुसार वर्णन किया गया है कि स्त्रियां तब श्रृंगार करें जब उनके पति घर पर हो। जब पति घर पर न हो तो स्त्रियों का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, इस शास्त्र का नियम है। आजकल पार्टी हो तो पति के सामने फटा पुराना कपड़ा पहनेंगी स्त्रियां, और पार्टी हो तो फर्स्ट क्लास पहन करके जाएगी, वहां किसको दिखाने जा रही हो है? तो रोहिणी जी बेचारी श्रृंगार नहीं की थी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी 17वां श्लोक में कहते हैं, रोहिणी च महाभाग नंद गोपा अभिनंदना बेचरन दिव्यवास कंठाभरण भूषिता। बलदेव की माता अति भाग्यशाली रोहिणी नंद महाराज का जसदा द्वारा अभिनंदित हुई, उन्होंने भी भड़कीले वस्त्र, कैसा हिंदी अनुवाद कर दिया यहां पर यार, भड़कीले वस्त्र, यार भड़कीले वस्त्र कहना चाहिए, टेंथ क्लास का हिंदी कर दिया, कोई बीबीटी वाला है उसको बदलो, भड़कीले नहीं। यहां कितना सुंदर यहां पर वर्णन किया गया, दिमाग खराब कर दिया, भड़कीले वस्त्र आज लोग पहनते प्लास्टिक वाला, ये भड़कीला वस्त्र होता है। यहां पर दिव्यवास कहा गया है, है? सुंदर, दिव्यवास मतलब सुंदर वेशभूषा धारण किया, सिल्क का, शुद्ध सिल्क का, मटका सिल्क का, सिल्क का कपड़ा पहनी, सुंदर, भड़कीले वस्त्र नहीं, दिव्य वस्त्र पहन रखे थे, और गले में हार माला था, अन्य गहनों से अपने को सजा रखा था। वे उस उत्सव के अतिथि स्त्रियों का स्वागत करने के लिए इधर उधर घूम रही थी। तो बाद में पांचवें दिन यशोदा रानी कही, अब तक से रोहिणी जी यशोदा के समान ही व्यस्त थी, जितने अतिथि थे उनको सत्कार करना, विदाई करना, ये करना, वो करना। अब अंतिम दिन रोहिणी जी का स्वागत हुआ और नंद रानी अपना जो बहुमूल्य वस्त्र था उनको प्रदान की, और रोहिणी दी और बलराम जी पांचवें दिन दान दिए, क्योंकि ये लोग भी बड़े हैं ना, तो नंद बाबा के उत्सव में रोहिणी और बलराम भी दान दिए थे। इस प्रकार से संध्या का जब समय हुआ तो वे लोग नदी यमुना जी में स्नान करने आए, और वहां पर वसुदेव जी के दो दूत छिप करके यमुना पार कर करके आए। नंद देखे दो ही कौन आदमी नदी में नहा रहे हैं, कौन आदमी है वो जो पार करके आ रहे हैं, क्योंकि राजा आए हैं तो कोई सामने नहीं रहना चाहिए, सब खाली होना चाहिए, रनवे होना चाहिए, तो यमुना में कौन आ रहा है? तो बस नंद बाबा पहचान गए उन दोनों को, और वह बात अकेला में नंद बाबा को बतलाए कि देखिए यहां पर जो उत्सव हो रहा है पांच दिन का, ये कंस का सिर दर्द हो गया है, आप कंस को आमंत्रित नहीं किए, सबको बताया आखिर राजा है उसको आमंत्रित करना चाहिए, आप जल्दी आकर के कंस का कर चुकाइए और उससे बात कीजिए, और आकर के पड़ाव पर मुझसे मिलिएगा। तो यह संदेश देकर के वे चले गए। उसके बाद छठे दिन अर्ली मॉर्निंग, पांचवें दिन दिन शाम को ही वे चले गए, और वसुदेव जी पहले कंस के पास गए और वसुदेव जी से मिले, वो कथा अलग है, वो दूसरा कथा है, तो समय भी हो गया उसको मैं नहीं लूंगा। तो संक्षिप्त में इस प्रकार से पांच दिन तक ये नंदोत्सव मनाया गया था। संक्षिप्त में नंदोत्सव का लीला का यहां पर मैं वर्णन करने का प्रयास किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नो क्वेश्चन आंसर, लीला है कि कोई प्रसंगत बाद में पूछ लेना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।